आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए बच्चों और महिलाओं के प्रति साइबर अपराध रोकने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
पवन दुग्गल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, धन्यवाद।
पवन जी, देश में महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध किस तरह से होते हैं, मतलब क्या अपराध होते हैं साइबर अपराध जिन्हें कह सकते हैं, और उनसे प्रभावी रूप से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, साथ ही वर्तमान स्थिति को आप किस तरह से आंकते हैं?
देखिए, आज हम लोग एक नए महामारी के युग में जा चुके हैं। ये साइबर क्राइम की महामारी का युग है। ये वो युग है जहाँ पर नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उत्पन्न हो रहे हैं कोविड-19 के बाद, और यहाँ पर उद्देश्य किया जा रहा है कि हर व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जाए। वैसे तो बहुत सारे क्राइम्स पुरुषों को टारगेट किए जाते हैं, लेकिन आज कुछ विशिष्ट तौर पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं को और बच्चों को टारगेट करने के लिए नए नए प्रकार के साइबर क्राइम उभर कर आ रहे हैं, और इनको न केवल पटने की जरूरत है बल्कि साथ ही साथ रेगुलेट करने की भी जरूरत है, कानून में संशोधन लाकर। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है बच्चों को और महिलाओं को ज्यादा जागरूक बनाने की जरूरत है, ताकि एटलीस्ट उन्हें पता लग जाए कि वो किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और उनसे निपटने के लिए उन्हें क्या क्या करने की आवश्यकता है।
पवन जी, बच्चों को साइबर अपराध से किस तरह से बचाया जा सकता है, विशेषकर अगर हम कम उम्र की बालिकाओं के संबंध में बात करें तो, खासतौर पर जब ऐसा देखा जाता है कि बालिकाओं को भ्रमित करना शायद आज के समय में कहीं ज्यादा आसान लगता है लोगों को?
देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप बालिकाओं को किस तरीके से सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि यही वो बालिकाएं हैं जो इंटरनेट पर खिंची चली आ रही हैं, जो इंटरनेट पर बिना किसी अंकुश लगाए विभिन्न प्रकार की डिस्कवरी प्रक्रियाओं में लगी हुई हैं, और यहाँ वो भूल रही हैं कि साहब ये नॉर्मल प्रकरण नहीं है इंटरनेट, ये एक ऐसा महासागर है जहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ मौजूद हैं। तो अगर आप एक बच्ची हैं, आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहती हैं, जरूर करें, लेकिन सेफ एंड सिक्योर इंटरनेट को एक्सेस करें। आजकल बहुत सारे ब्राउजर एक्सटेंशन आ गए हैं जो बच्चों के लिए खासतौर पर बनाए गए हैं, तो अगर बालिकाएं इस्तेमाल कर रही हैं उस तरह के ब्राउजर एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगी, तो निश्चित तौर पर जो असुरक्षित इन्फ्लुएंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं, वो ब्लॉक कर दिया जाएगा इन एक्सटेंशन के द्वारा, और इसलिए हम पाएंगे कि बच्चों को, खासतौर पर महिलाओं को और बालिकाओं को हम ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन उसके लिए शुरुआत तो बालिका से ही करनी पड़ेगी, उसे बताना होगा कि साहब ये नया महासागर है, इसके अंदर कूदने से पहले तैरना सीख लो, अपने आप को सुरक्षित करना सीख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पीडोफिल्स हैं जो बच्चियों का सेक्सुअल शोषण करना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चियों को गुमराह करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चियों बालिकाओं में अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग को, जागरूकता को प्रोत्साहन करना बहुत जरूरी है।
पवन जी, बच्चों बालिकाओं और महिलाओं को अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे कि फोन नंबर, ईमेल, घर का पता, अजनबियों के साथ तस्वीरें शेयर करने से बचना आज के समय में क्यों आवश्यक है?
देखिए, आज का समय नॉर्मल समय नहीं है। आज भारतवर्ष में दो विशिष्ट प्रकार की क्रांतियां चल रही हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। पहली क्रांति है जहां पर भारतवासी शेयर कर रहे हैं अपने डेटा इंटरनेट पर बिना सोचे समझे कि उसके कानूनी क्या परिणाम हो सकते हैं। दूसरा जो रेवोल्यूशन या क्रांति आजकल चल रही है वो ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन है, जहां पर भारतवासी रिकॉर्ड कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की जानकारियां, डेटा, इन्फॉर्मेशन। तो जब इस संदर्भ में आप ऑनलाइन स्पेस में जाते हैं तब आपको समझना होगा कि ये वो ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप अपने डेटा शेयर करेंगे और सुरक्षित रह जाएंगे। ये वो जगह है जहां पर आपको डेटा केवल कम से कम शेयर करना है, नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है, अनजान व्यक्तियों से बात करनी नहीं है, परिचय उनसे बढ़ाना नहीं है, अनजान नंबर से कॉल करना नहीं है, अनजान नंबर पे कॉल आए तो वीडियो कॉल नहीं करनी, अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो कॉल आपके पास आ रही है, जो व्यक्ति विशेष ऑनलाइन आपके साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, वो लड़का है या लड़की है, वृद्ध है या बच्चा है, या उसका उद्देश्य साइबर क्राइम करना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को सुरक्षित रख पाएं, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना पाएं, एक महिला होने के नाते, एक बालिका होने के नाते, तो आप ही की सिक्योरिटी और ज्यादा प्रबल रूप से सुरक्षित रहेगी और आप भी इस तरह की नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से काफी हद तक बचे रहेंगे।
पवन जी, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण साइबर अपराध करना अब शायद काफी हद तक सरल हो चुका है या सरल स्तर तक पहुंच चुका है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को साइबर अपराध के विषय में आप कैसे देखते हैं?
देखिए, टेक्नोलॉजी एक कॉन्स्टेंट यात्रा है, लगातार विकसित होती जा रही है। इस विकसित टेक्नोलॉजी का तात्पर्य यह है कि अब यही टेक्नोलॉजी आपको नए नए स्वरूप, नए नए अवतार दिखा पाती है, जिसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। अब समस्या यह है, क्योंकि साइबर क्राइम आज पूरा फैल चुका है, एक ग्लोबल इंटरनेट इकोनॉमी बन चुका है। समस्या यह है कि आज इंटरनेट पर आप अपनी जो पहचान है वो छुपा सकते हैं, इसलिए बहुत से साइबर क्रिमिनल गैंग्स और साइबर क्रिमिनल इंडिविजुअल सक्रिय हो चुके हैं। जितनी जल्दी हम इस बात को मान लें कि ये नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ साइबर क्राइम करना और आसान हो गया है, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। साइबर क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं साइबर क्राइम के प्रति। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम एक कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इकोनॉमी है। सन 2023 में दुनिया भर में लोगों ने $6 trillion से ज्यादा पैसे गवाए इस साइबर क्राइम की वजह से। 2024 में उम्मीद की जा रही है कि पूरी दुनिया भर में लोग करीबन $8 trillion गवा देंगे साइबर क्राइम के प्रति, और 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीबन $10.5 trillion का नुकसान होने वाला है ग्लोबल लेवल पे राष्ट्रों को, इंडिविजुअल्स को, इन साइबर क्राइम की वजह से। तो जब इतनी ब्रॉड और इतनी महत्वपूर्ण तरीके से एडवांस और पनपने वाली इकोनॉमी आ गई है साइबर क्राइम की, तो उससे बचना हम लोगों का पहला दायित्व होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए।
पवन जी, देश में महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की जब हम बात करते हैं, तो समाज में इन मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से किए जा सकते हैं?
मुझे लग रहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और काम करने की जरूरत है। केंद्रीय सरकार की सराहना की जानी चाहिए कि वो लगातार तत्पर समर्पित है, ताकि साइबर क्राइम की तादाद और उसका ग्रोइंग रेट जो है कम किया जा सके। तभी लिए केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को स्थापित किया है, और वो पोर्टल पिछले चंद महीनों में ही बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। प्रत्येक माह लाखों कंप्लेंट्स इस पोर्टल पर आती हैं, जो अवेलेबल है cybercrime.gov.in पर। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन का भी गठन किया है। अगर आप कभी भी पाते हैं कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, तो आप नंबर घुमाइए 1930। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। ये हेल्पलाइन नंबर पुलिस अधिकारी मैन करते हैं। आप कॉल करेंगे, वो आपकी केस दर्ज करेंगे और आपको जो सहायता प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की स्टेट पुलिस भी आजकल आपको अपनी सुविधा प्रदान करती है कि उनकी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन FIR दर्ज कराइए, शिकायत दर्ज कराइए। तो कोशिश तो चल रही है, लेकिन हमारा कानून बहुत ज्यादा कारगर रूप से सफल या सुरक्षित या कहता हूँ बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अधिकांश साइबर क्राइम्स को देख लें, जो भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 के चैप्टर 11 के अंदर परिभाषित हैं, तो अधिकांश साइबर क्राइम्स तो अवेलेबल ऑफेंस हैं। तो जब जमानत अधिकार के तौर पर मिलती है, तो लोगों के हृदय में डर नहीं रहता। जब डर दहशत नहीं रहता, तो वो खुलेआम होकर साइबर क्राइम करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कमी है भारतीय IT एक्ट में, उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है, इस कानून का संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और ज्यादा नए टूल्स के साथ अवगत कराना चाहिए, ताकि वो अपने लेटेस्ट साइबर फोरेंसिक टूल्स ला सकें इस तरह के साइबर क्राइम के मैटर्स को डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलानी है कि साहब साइबर क्राइम केवल पाश्चात्य देशों तक नहीं रहा, आज साइबर क्राइम आपके घर पर दस्तक कर रहा है। अगर आप थोड़े से भी नेग्लिजेंट हुए, थोड़ी सी सावधानी हटी, तो दुर्घटना जरूर घट जाएगी, आप साइबर क्राइम के शिकार हो जाएं।
तो इस संबंध में सही दिशा निर्देश तैयार करने और इस तरह महिलाओं तथा बच्चों के प्रति साइबर अपराध के निवारण के लिए प्रभावी उपाय जो हमें तैयार करने हैं, उनमें शैक्षणिक संस्थानों की किस तरह से भूमिका हो सकती है?
मुझे लगता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, अगर आप साइबर क्राइम की फिनोमिनन से पूरी तरह से लड़ना चाहते हैं। मैं कई सालों से केंद्रीय सरकार को कह रहा हूं और मैंने हिदायत दी है कि आप साइबर लॉ और साइबर क्राइम संबंधित एजुकेशन पहली कक्षा से प्रारंभ कर दें। क्यों? क्योंकि आज भारतवासी अपने बच्चों को डिवाइसेस, फोन, इंटरनेट 2 या 3 साल में देना शुरू कर रहे हैं। तो जब आप बच्चों को ऑलरेडी इंटरनेट पर इतनी छोटी उम्र में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें जागरूक बनाना भी जरूरी है। तो जब आप साइबर क्राइम और साइबर लॉ एजुकेशन को अनिवार्य बनाएं, तो संभावित तौर पर हर बच्चे को स्कूल में, अपने शिक्षा में उसके बारे में अवगत होना पड़ेगा। और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चों को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें और अनावश्यक तरीके से साइबर क्राइम का शिकार न बन सके।
पवन जी, साइबर ग्रूमिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर खतरा है जिससे सबसे ज्यादा बच्चे और किशोर प्रभावित होते हैं, और इस माध्यम से बच्चे यौन शोषण तक का शिकार भी हो जाते हैं। आपने भी कुछ देर पहले इसके बारे में बताया था। तो अपने बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं इन सारी चीजों से?
देखिए, बच्चों को केवल दोस्त बनकर ही बचाया जा सकता है। आजकल के बच्चे लेक्चर भी नहीं चाहते, लेकिन अगर आप उन्हें दोस्त बन के बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि ये अथाह महासागर है, पहले आप तैयार तो हो जाइए इसकी चुनौतियों से डील करने के लिए, तो मुझे लगता है तब बच्चे ज्यादा बात सुनेंगे। दूसरी बात, बच्चों के साथ अगर आप केस स्टडी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें, अपने जब खाना खाते हैं बच्चों के साथ कुछ अखबार में छपा उसके बारे में चर्चा करें, उनसे उनका ओपिनियन ढूंढें और कहीं ना कहीं आदान प्रदान करें अपने विचारों का, उससे भी बच्चा एक ऐसी सीख लेता है जो आजीवन उसके साथ रह जाती है। अल्टीमेटली बच्चा भी चाहता है कि माँ बाप का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चा कोई भी नकारात्मक कॉन्सिक्वेंसेस का सामना न कर सके। तो लिहाजा अगर हम बच्चों को प्यार से दोस्त बनकर समझाने का प्रयास करेंगे, उसको बताएंगे कि ये चुनौतियां हैं, ये खड्डे रास्ते में हैं, कृपया इन खड्डों में ना गिरें, और उनको उनकी भाषा में, उनके सरल स्वरूप में और केस स्टडीज के माध्यम से उन्हें बताएंगे, तो काफी हद तक बच्चे भी आज बहुत इंटेलिजेंट हैं, तुरंत समझ जाएंगे, तो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए प्रबल रूप से कदम उठाएंगे।
पवन जी, आजकल कई सारे एप्स हमें मोबाइल में ऐसे मिल जाते हैं जिनके माध्यम से बहुत ही कम उम्र के बच्चे अपने फोटोज वीडियोज अपलोड करते हैं, उनको ये लगता है कि इससे उन्हें पॉपुलरिटी मिल जाएगी या पैसे अर्न होंगे, खासतौर पे दूसरों से वो इन्फ्लुएंस होते हैं कई बार, और लेकिन जो साइबर अपराधी हैं वो इन सारी चीजों का फायदा उठाते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? खासतौर पे लड़कियों की अगर हम बात करें तो उनके केसेस में ये सारी चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। और साथ में आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि डेटा संरक्षण कानून इसमें कितना महत्व रखता है, कितना जरूरी है।
देखिए, भारतीय सरकार लगातार तत्पर लगी हुई है कि लोगों को साइबर क्राइम से बचाया जाए, लिहाजा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, जागरूकता संबंधी कैंपेन्स भी चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ केंद्र सरकार ने अब एक नया कानून भी पारित कर दिया है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट सन 2023। ये कानून संसद ने पारित तो कर दिया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि केंद्रीय सरकार अभी इस पर अपने कुछ रूल्स बना रही है। लेकिन ये कानून इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी नाबालिग चाइल्ड का अगर आप पर्सनल डेटा लेते हैं तो आपको उससे पहले नोटिस देना पड़ेगा उस नाबालिग बच्चे के माँ बाप को कि साहब मुझे आपकी कंसेंट चाहिए, मैं आपके बच्चे की फला फला जानकारी एकत्रित करना चाह रहा हूँ। और जब तक उसके माता पिता आपको लिखित में अपनी कंसेंट नहीं देंगे, अपनी स्वीकृति नहीं प्रदान करेंगे, तब तक आप उस बच्चे का कोई भी डेटा ना तो प्रोसेस कर सकते हैं ना डील या हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो तैयार हो जाइए, इस नए कानून में 250 करोड़ रुपए तक का हर्जाना आप पर लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने काफी सख्त पेनल्टीज भी प्रस्तावित कर रखी है ताकि लोगों के हृदय में डेटा से संदर्भ में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट आ जाए, लोगों का डेटा अनावश्यक तरीके से उठाए ना, और खासतौर पर बच्चों का डेटा को वो ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखें और प्रॉपर कंसेंट के बाद ही उसे प्रोसेस कर पाए।
पवन जी, हमसे पूछना चाहूंगा कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए किस तरह से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्या निवारण उपयोग कर सकते हैं?
देखिए, बच्चे आज मॉनिटरिंग के दौर से तो निकल चुके हैं, आप उन्हें मॉनिटर करने का प्रयास करेंगे वो आपकी मॉनिटरिंग बंद कर देंगे और आपके फोन पर आपकी मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे, तो वो मॉनिटरिंग वाला जमाना चला गया। कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते थे आप लगा सकते हैं कि जिससे आप लिमिटेड एक्सेस देंगे इंटरनेट को, लेकिन आज आपने बच्चों को मोबाइल फोन दे दिया है, बच्चे आज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को गुप्त बना देते हैं और फिर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स पर जाते हैं, तो मुझे लगता है आज के संदर्भ में मॉनिटरिंग तो बहुत ज्यादा कारगर रूप से सफल नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, अगर आप बच्चों को दोस्त बनकर उसका कॉन्फिडेंस जीत करके उनके साथ बात करेंगे तो संभावित तौर पर बच्चे समझेंगे भी और अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास भी करेंगे।
पवन जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा, साइबर हमलों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति किस प्रकार की, ये भारत में अपना असर ज्यादा कर रही है या भारत में ही लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं?
देखिए, साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा में से नहीं ग्लोबल फिनोमेनन है, भारत में इसलिए ज्यादा प्रखर रूप से आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का राष्ट्र बन चुका है, यहाँ सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, यहाँ सबसे बड़ी मार्केट ऑनलाइन आने वाली है, तो लिहाजा लगभग हर क्रिमिनल स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर की नजर भारत पर जुड़ी हुई है। जो लेटेस्ट प्रकार के साइबर क्राइम है सबसे पहले भारत में टेस्ट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या के राष्ट्र वाली इकोनॉमी में अगर आपका साइबर क्राइम चल पड़ा तो दुनिया के हर कोने में चल पड़ेगा, तो यही कारणवश है कि हम साइबर क्राइम्स देखने को हमें मिलते हैं, और इसीलिए हमें लगातार अपनी न केवल कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है बल्कि साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों को भी ज्यादा ट्रेन करना है और ज्यादा जागरूकता बच्चों में, बालिकाओं में, महिलाओं में खास तौर पर करनी है ताकि वो एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके ताकि जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो सके।
पवन जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे बच्चों और महिलाओं के प्रति साइबर अपराध रोकने के उपायों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।